परिशिष्ट सात, जन अधिकार आंदोलन, पॉपुलर राइट्स मूवमेंट। यह आंदोलन आरंभिक मेजी काल का एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। यह उन असंतुष्ट समूहों का कमजोर संगठन था जिनमें समुराय और साधारण नागरिक प्रमुख थे। इनका मुख्य लक्ष्य नई मेजी सरकार को पश्चिमी ढंग पर संगठित करना था। इसके सदस्य राज्य की महापरिषद दाजोकाना में जापान की कोरिया नीति के मुद्दे पर हारे हुए लोग थे। 1873 में कोरिया के मुद्दे पर हारे हुए लोग थे। इन लोगों ने अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए। एतो शिंपेई ने 1874 में और सैगो ताकामोरी ने 1877 में खोई हुई शक्ति प्राप्त करने के लिए हथियार उठाए, लेकिन दोनों विद्रोह जो क्रमशः सागा विद्रोह और सत्सुमा विद्रोह नामों से जाने जाते हैं, नई सरकार की संगठित सेना द्वारा दबा दिए गए। अन्य कई व्यक्तियों ने जैसे इतागाकी, तायसुके और गातो शोजीरो ने अलग रास्ता अख्तियार किया। उन्होंने स्थानीय राजनीतिक संगठन बनाकर सामाजिक असमानता के मुद्दे पर लोगों को जिस नई विचारधारा के तहत राजनीतिक भागीदारी के लिए प्रेरित करना शुरू किया वह सत्सुमा चोशु की अल्पसंख्यक सरकार के शासन के बिल्कुल विपरीत थी। यह राजनीतिक सत्ता प्राप्ति की रणनीति धीरे धीरे एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में परिणत हुई जो जन अधिकार आंदोलन कहलाया। आरंभ में इस आंदोलन का बहुत ही सीमित संगठनात्मक, भौगोलिक और वर्गीय चरित्र था। इस आंदोलन से संबंधित एक संस्था थी आयकोकु कोतो अथवा देश भक्त जन पार्टी, पब्लिक पार्टी ऑफ पैट्रियट्स, जिसकी नींव इतागाकी ने 12 फरवरी 1874 को रखी थी। इस संस्था का मुख्य दर्शन नैसर्गिक अधिकारों का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ नेचुरल राइट्स था तथा इसका प्राथमिक राजनीतिक उद्देश्य सरकार में जन प्रतिनिधित्व, पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा देना था। जन भागीदारी से इतागाकी का तात्पर्य एक ऐसे मतदाता मंडल के निर्माण से था जो पूर्व समुराय वर्ग, धनवान व्यापारियों और जमींदारों तक सीमित हो। अभिजातियों पर जोर देने की इस प्रवृत्ति के कारण विभिन्न विद्वानों ने जन अधिकार आंदोलन के प्रारंभिक दौर को अभिजातवादी कहा। ऋषिशा अथवा स्वतः सहायता संस्था, सेल्फ हेल्प सोसाइटी, जिसका संगठन भी इतागाकी ने अप्रैल 1874 में किया, भी इसी प्रकार अभिजातवादी चरित्र की थी। हालांकि इतागाकी ने समानता के मुहावरे को समय समय पर दोहराया, लेकिन उसकी प्रतिबद्धता आंदोलन के सामाजिक आधार की व्यापकता को प्रतिनिधि सरकार के लिए और उसके द्वारा धनी वर्ग और व्यापारियों या जिन्होंने उसके आंदोलन को आर्थिक सहायता प्रदान की के हितों को मजबूत करने के प्रति थी। अप्रतिबद्ध लोगों के प्रति इस आंदोलन की अत्यधिक निर्भरता और सतहीपन तब और स्पष्ट हो गए जब 1857 में इतागाकी सरकार में शामिल हो गए। हालांकि मेजी शासकों के साथ इतागाकी का गठबंधन ज़्यादा दिन चला नहीं तथा 6 महीने के अंदर ही ऋषिशा पुनः जीवित हुई। इसके नेतृत्व का झुकाव और भी जनतांत्रिक सोच की ओर बढ़ा। आय कोकुशा अथवा देशभक्तों का समाज, सोसाइटी ऑफ पैट्रियट्स, जिसका गठन 1875 में हुआ था, को अप्रैल 1878 में पुनः जीवन दिया गया। मार्च 1879 तक इस संगठन में 18 जिला तथा क्षत्रिय स्तर के राजनैतिक दल शामिल थे। यह आंदोलन जन अधिकार आंदोलन के देश भर में फैलने की तार्किक परिणति थी। 1880 तक 150 स्थानीय संगठनों का गठन हो गया जिसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसी राष्ट्रीय परिषद की स्थापना करना था जो अब तक अधिकारों से वंचित मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी हो। अब तक जन अधिकार आंदोलन से जुड़े प्रमुख राष्ट्रीय संगठनों ने इसके सामाजिक और भौगोलिक आधार को विस्तार प्रदान करना आरंभ कर दिया था। विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं ने उस कच्चे माल का काम किया जिससे जापान की प्रथम राष्ट्रीय पार्टी जीयूतो अथवा उदारवादी दल की नींव 29 अक्टूबर 1881 को इतागाकी एवं उनके साथियों ने रखी। कुछ महीने बाद ओकुमा और उनके साथियों ने रिकेन काइशिंतो अथवा संवैधानिक सुधार दल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पार्टी का गठन किया। जीयूतो मुख्यतः कृषकों का संगठन था तथा रिकेन काइशिंतो को शहरी मध्य वर्ग और अभिजात्य बुद्धिजीवियों का समर्थन प्राप्त था। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि रिकेन काइशिंतो दोनों में ज्यादा उदारवादी था और वह राज्य की नीतियों में ज्यादा विश्वास रखता था। यदि बढ़ा चढ़ाकर तुलना की जाए तो कहा जा सकता है कि रिकेन काइशिंतो कोकेकेन अथवा राज्य शासन स्टेट अथॉरिटी का प्रभावशाली प्रवक्ता था, जबकि जीयूतो विशेषतः इसके कट्टरपंथी गुट ने राष्ट्र की ज्यादातर जनसंख्या मुख्यतः किसानों के हितों का ध्यान अर्थात मिंकन अथवा जन अधिकार पॉपुलर राइट्स का बीड़ा उठाने का दावा किया। मेजी सरकार की प्रतिक्रिया जन अधिकार आंदोलन के प्रति हिंसक रही। सेना और पुलिस ने सैकड़ों विद्रोहियों को जेल में बंद कर दिया और कुछ को मृत्यु दंड भी दे दिया। दमनकारी कानून बनाए गए जिनके द्वारा बोलने, लिखने और एक स्थान पर इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई। अधिकारियों के दबाव, विद्रोहों से हुई व्याकुलता एवं आपसी आंतरिक संघर्ष के फलस्वरूप जीयूतो को 29 अक्टूबर 1884 को भंग कर दिया गया। कुछ माह उपरांत ओकुमा के रिककेन काइशिंतो का भी वही हाल हुआ। स्पष्ट रूप में अब जन अधिकार आंदोलन संगठनिक अभिव्यक्तियों, दलों और दलीय नेताओं पर निर्भर हो गया। विभिन्न दलों के टूट जाने के कारण आने वाले कुछ वर्षों में जन अधिकार आंदोलन असंगठन की अवस्था में रहा। ओई केंतारो असफल ओसाका घटना के बाद स्वतंत्रता संग्राम को जापान से कोरिया ले गए। यह घटना आंदोलन को और आगे चलाने की असहाय अव्यवस्था को दर्शाती है। इसी तरह शिंजुको घटना, जो मेजी अल्पतंत्र के विरुद्ध विफल हत्या की कोशिश थी, भी इस आंदोलन की असहाय दशा को चिन्हित करती है। हड़बड़ी में तैयार की गई ये योजनाएं इस बात की सूचक थी कि यह आंदोलन अत्यंत कठिन दौर से गुजर रहा था। गोतो शोजीरो के नेतृत्व में 1880 के दशक के इस आंदोलन के बिखरे हुए तत्वों को समेटने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका यह प्रयास भी 1887 के शांति परीक्षण 1887 के शांति परिरक्षण कानून, जिसने राजनीतिक विरोधियों को आंतरिक निष्कासन के लिए बाध्य कर दिया, के कारण व्यर्थ गया। 1889 के मेजी संविधान ने मिंकन पर कोककन की प्रभुता स्थापित की, जो जन अधिकार आंदोलन के कफन में अंतिम कील साबित हुई। हालांकि आंदोलन के बहुत से जनतांत्रिक आदर्श जो 1870 के दशक के अंतिम वर्षों में उभर कर आए थे, आगे चलकर 20वीं सदी के समाजवादी और मजदूर संगठनों का आधार साबित हुए। लेकिन यह आंदोलन विधिवत तभी समाप्त हो गया था जब इसके प्रमुख नेता इतागाकी ओकुमा, गोतो कोनो आदि संवैधानिक सरकार में भागीदार बन गए। जन अधिकार आंदोलन के स्वरूप और इसके दूरगामी प्रभावों की व्याख्या अनेक प्रकार से की गई है। यह सुझाव भी दिया गया है कि संसदीय विकास में मेजी सरकार की भूमिका इस आंदोलन और इससे जुड़े दलों के लिए बाधक, प्रतिक्रियावादी और घृणात्मक थी। संवैधानिक सरकार की स्थापना की दिशा में मेजी सरकार द्वारा उठाए गए अनुक्रमवादी कदमों को परंपरागत अधिनायकवाद के रूप में देखा गया है। वैसे मेजी नेतृत्व जिसने तोकुगावा परंपरा की प्रशासनिक राजनीति को अपनाया और जो आधुनिक राज्य निर्माण के कार्य एवं उससे संबंधित केंद्रीकरण एवं जन स्वीकृति में व्यस्त था से अधिक उम्मीद रखना भी ना समझी थी। संभवतः यह जन अधिकार आंदोलन विभिन्न शक्तियों एवं मेजी सरकार के बीच गतिशील आंतरिक संबंधों को दर्शाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जनमत तैयार करने में जन अधिकार आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही, विशेषकर उन स्थानों पर जहां इसका कोई पूर्व अस्तित्व नहीं था। राजनीतिक दलों के उदय से न केवल प्रतिनिधित्व व्यवस्था का जन्म हुआ, बल्कि इस आंदोलन ने शायद संविधान की तिथि को आगे लाने और इसके दायरे को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया। यह आंदोलन पश्चिमी राजनीतिक सिद्धांतों और प्रयासों से भी प्रभावित था। इस प्रभाव के फलस्वरूप इस आंदोलन ने दोनों सुधारवादी अधिकारियों और उदारवादी विरोधियों को एकत्रित कर दिया। फिर इन दोनों ने ही पश्चिमी ढंग की प्रतिनिधि व्यवस्था की बात की। स्थानीय भावनाओं ने भी इस अधिकार आंदोलन को प्रभावित किया, इसलिए नई सरकार को स्थानीयता को स्वीकार करना पड़ा। इस आंदोलन के इसी स्थानीय स्वरूप ने आगे चलकर पश्चिमी ढंग की व्यक्तिवादिता को जन्म दिया और व्यक्तिवादी अधिकारों की बात होने लगी।